Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharva Vediya Mundakupanishad ke Vyakhyan Roop Prashnopanishad ka vichar hum log kar rahe hain. प्रश्नोपनिषद के छह प्रकरणों में से चतुर्थ प्रकरण का विचार हो रहा है। इस प्रकरण में आचार्य पिप्पलाद जी से ऋषि गार्ग्य के प्रश्न हैं अलग अलग पांच। पहला प्रश्न तो था कि जागृत अवस्था का धर्मी कौन है, जागृत अवस्था किसका धर्म है, आत्मा की उपाधि का धर्म है या आत्मा का ही धर्म है। तो बताया गया आत्मा की उपाधि जो बाह्य इंद्रिया है उनका जागृत अवस्था धर्म है। दूसरा प्रश्न था तीनों अवस्थाओं में शरीर की सुरक्षा किसका धर्म है, तीनों अवस्थाओं में शरीर का पालन कौन करता है। तो जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में हमेशा व्यापार रत रहता है, व्यापार से उपरत नहीं होता, माना जाएगा उसी का धर्म ये शरीर की सुरक्षा है, वो है प्राण। तो इस प्रकार द्वितीय प्रश्न का उत्तर भी तीसरी और चौथी खंडिका में दिया गया। तीसरा प्रश्न था कि स्वप्न अवस्था किसका धर्म है, स्वप्न कौन देखता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पंचम कंडिका प्रारंभ हुई है। पंचम कंडिका में आचार्य पिप्पलाद जी बता रहे हैं कि यह स्वप्न अवस्था भी आत्मा की स्वाभाविक नहीं है, आत्मा के उपाधि का ही यह धर्म है। त्वम पदार्थ शोधन करना है। तुम पदार्थ शोधन इसलिए किया जा रहा है कि तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान को कहा जाता है पराविद्या, और उस पराविद्या का निरूपण विस्तार से करना अवशिष्ट तीन प्रकरणों का उद्देश्य है, इसलिए तीन प्रकरण प्रारंभ हो रहे हैं, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न और छठवां प्रश्न रूप। तो तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान उपयोगी तत्पदार्थ का ज्ञान तथा त्वम पदार्थ का ज्ञान है। यहां चतुर्थ प्रकरण में त्वम पदार्थ का ज्ञापन हो रहा है, शोधन हो रहा है। पंचम प्रकरण में होगा तत्पदार्थ का शोधन, वाक्यार्थ ज्ञान बताया जाएगा छठवें प्रकरण में। इस प्रकार ये तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न होने वाली अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारि का प्रमारूप जो पराविद्या है मुंडक उपनिषद में कही गई उसकी व्याख्या हो जाएगी। उसी को ध्यान में रख करके त्वम पदार्थ का शोधन करते हुए जागृत अवस्था तथा शरीर की सुरक्षा ये आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है, उसकी उपाधि के धर्म है, ये जैसा कहा गया ऐसा स्वप्न अवस्था तथा सुसुप्ति अवस्था भी आत्मा का अपना स्वाभाविक धर्म नहीं है, इसे आगे बताया जा रहा है। तो अत्र एष देवः स्वप्ने महिमानम अनुभवति, इसमें अत्र शब्द का अर्थ है कि जब बाह्य इंद्रिया अपने अपने व्यापारों से उपरत हो जाए और प्राण व्यापार से युक्त रहें और सुसुप्ति में अभी पहुंचा नहीं है, ये बीच वाली अवस्था, तो जागृत और स्वप्न के सुसुप्ति के बीच वाली अवस्था है स्वप्न अवस्था। तो उस समय फिर बाह्य इंद्रिया तो अपने अपने व्यापारों से उपरत होकर के मन के अधीन हो गई है, मन में स्थित हो गई है, और मन जब स्वप्न का फलोपभोग कराने वाला प्रारब्ध फलोन्मुख होता है तो जिन पदार्थों के माध्यम से स्वप्न में प्रारब्ध का फलोपभोग करना है उन पदार्थों के वासनाओं से युक्त रहता है और वे जो तत्तत् पदार्थों की वासनाएं उद्भूत हुई तो उन वासना रूप पदार्थों का दर्शन उस समय होता है। मन ही बन जाता है अनेक स्वप्न पदार्थ के रूप में और स्वप्न में भोग्य पदार्थ तथा एक भोक्ता जो प्रतीत होता है उस भोक्ता के रूप में भी मन की वासनाएं ही दिखती हैं। इसलिए माना जाता है कि उस समय एष देव शब्दित जो मन है वह स्वप्ने महिमानम अनुभवती, स्वप्न में महिमा का अनुभव करता है। महिमा है विभूति और विभूति शब्द का अर्थ होता है वि यानि विविध और भूति का अर्थ है होना, विविध रूपों में अभिव्यक्त होना, ये विभूति कहलाती है। तो है अकेला मन ही उद्भूत वासनाओं से युक्त और वही स्वप्न में भासमान सारे प्रपंच के रूप में अभिव्यक्त होता है, ये उसकी विभूति है। और इस विभूति की अनुभूति कौन करता है तो एषः देव यानी स्वप्न ये आपका मन। तो इससे एक प्रकार से बताया जा रहा है कि स्वप्न अवस्था मन का धर्म है। यद्यपि अकेला मन स्वप्न नहीं देखता, स्वप्न तो देखता है मन उपाधिक जीव, लेकिन ये दिखाना है कि मन रूपी उपाधि ना हो तो ये जो चेतन जीव है वह स्वतः न तो जग सकता है न तो स्वप्न देख सकता है। इसलिए जागृत आदि सब अवस्थाएं उसके उपाधिभूत बाह्य इंद्रिया तथा अंतकरण मन के निमित्त से होने से उसी मन की ही बताई जा रही है, उपाधि की बताई जा रही है। और मन उपाधिक चैतन्य को बताया जा रहा है बिल्कुल निर्विकार। निर्विकार होने से जो तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ है निर्विकार असंग चेतन ब्रह्म उसके साथ स्वाभाविक अभेद निश्चित होगा। इसके लिए त्वम पदार्थ रूप जीव के निरुपाधिक स्वरूप को दृष्टिगोचर करना आवश्यक है, वो जिज्ञासु के दृष्टिगोचर कराया जा रहा है त्वम पद के लक्षार्थ को। उस दृष्टि से कहा कि अत्र एष देवः स्वप्ने महिमानम अनुभवति। अब महिमा का अनुभव कैसे करता है इसे स्पष्ट करने के लिए इस कंडिका का अवशिष्ट वाक्य है। वो बताया जा रहा है कि यद् दृष्टम् दृष्टम् अनुपश्यति। तो दृष्टम् यानी पहले चक्षु इंद्रिय से अनुभूत गृहित जो जागृत अवस्था में पदार्थ है उन्हें कहा जाएगा दृष्ट, और उन दृष्ट पदार्थ के चाक्षुष प्रमा से अनुभूत पदार्थ के बुद्धि में संस्कार पड़ जाता है। जिस पदार्थ का भी आप अनुभव करो उस पदार्थ के संस्कार से संस्कारित हो जाती है बुद्धि, और वह संस्कार जब कभी उस पदार्थ निमित्तक स्वप्न में फलोपभोग वाला प्रारब्ध अभिमुख होता है, फलोन्मुख होता है, तो उस समय वह संस्कार अभिव्यक्त होता है, और उस संस्कार का पदार्थ विषय दिखता है उस समय स्वप्न में, वासना में पदार्थ दिखता है। वो जो संस्कार पड़ा है उस संस्कार के विषय जैसा एक वासना में विषय दिखता है, वही नहीं दिखता, वो तो व्यावहारिक सत्य था। व्यवहार अवस्था में जागृत अवस्था में अनुभूत पदार्थ था, उसी का दर्शन स्वप्न में नहीं होता, उसके जैसा एक वासनामय पदार्थ दिखता है, इसलिए वो जागृत अवस्था में आने के बाद बाधित हो जाता है। और जागृत के पदार्थ तो जागृत अवस्था में बाधित नहीं होता है ना, तो मानना होगा कि जो हमने पहले जागृत अवस्था में देखा है पदार्थ उसका हमारी बुद्धि में पड़ा संस्कार, और वह संस्कार कभी उद्भूत हुआ मन में स्वप्न अवस्था में, और उस संस्कार का विषयभूत जो जागृत अवस्था का पदार्थ था उसके जैसा ही एक दूसरा वासना में पदार्थ दिखता है। शिरसी में जिस सत्य सर्प को देख करके संस्कार पड़े सत्य सर्प के, वही सर्प नहीं दिखता। जिस चांदी को देख करके बुद्धि में चांदी के संस्कार पड़े हैं वही चांदी नहीं दिखता, वो तो स्मर्यमान है, और यहां पर तो वो प्रत्यक्ष दिख रहा है सुक्ति में चांदी, वो अनिर्वचनीय है, उसके जैसा है वही नहीं। ऐसे स्वप्न के पदार्थ हमने पहले जागृत में जिन जिन पदार्थों को देखा है उन उन पदार्थों के जैसे दूसरे पदार्थ दिखते हैं, वही नहीं दिखते। ये तो मनोकृत है स्वप्न के पदार्थ, और जागृत के पदार्थ हैं ईश्वर की सृष्टि, ईश्वर कृत है, जागृत अवस्था में बाधित नहीं होते। और स्वप्न के जो दिख रहे पदार्थ वे स्वप्न देख करके जगने के बाद जागृत अवस्था में बाधित हो जाते हैं, इसलिए मानना होगा जागृत में जिन पदार्थों को देखा वे ही नहीं दिखे, उनके जैसे दूसरे अनिर्वचनीय पदार्थ दिखे स्वप्न में दिखते हैं। इसलिए कहा कि यद् दृष्टम् दृष्टम् अनुपश्यति, इसलिए दृष्टम के पास में ईव शब्द का अध्याय करना होगा कि जागृत में जो चक्षु इंद्रिय से गृहित किए पदार्थ उन पदार्थों जैसे स्वप्न में दूसरे पदार्थों का अनुपश्यति दर्शन करता है। लेकिन किसका दर्शन करेगा स्वप्न में, जिनका जागृत में अनुभव हुआ है, चक्षु इंद्रिय से जिनका ग्रहण हुआ उन्हीं को चक्षु इंद्रिय से दिखने वाले स्वप्न में पदार्थों को देखेगा उनके जैसे। ऐसे श्रुतम श्रुतम एव अर्थम अनुसृणोति, तो जागृत अवस्था में श्रोत्र इंद्रिय से जिन शब्द रूप विषय का ग्रहण किया, शब्दों का ग्रहण किया, उन शब्दों का संस्कार बुद्धि में पड़ता है और उन संस्कारों से, उद्भूत संस्कारों से फिर स्वप्न अवस्था में भी कभी ऐसा स्वप्न देखा होगा ना कि स्वामी प्रेमपुरी आश्रम में तीसरे माला में जो प्रवचन हो रहा है और वहां पर हम बैठे हैं सुन रहे हैं, ऐसा कभी स्वप्न में आता है कि नहीं आता है? तो वो यहीं आकर के नहीं बैठते हो, तो शरीर के अंदर ही होता है, इतना बड़ा हॉल, स्वप्न तो दिखता है शरीर के अंदर ही। तो ये पूरा तीसरा माला और तीसरे माले में सब ये कुर्सियां और सब सत्संगी और प्रवक्ता ये सब आपके शरीर के अंदर कैसे समा जाएंगे? इसलिए मानना होगा, लेकिन दिखता ऐसा ही सारा दृश्य कि वो इसके जैसा ही वो दूसरा दिखता है वहां पर, लेकिन इसका संस्कार पहले चाहिए। जिसने पहले जागृत अवस्था में प्रवचन सुना है उसी को कभी स्वप्न में प्रवचन हम सुन रहे हैं ऐसा स्वप्न आ सकता है, ये होता है। इसलिए कहा कि श्रुतम श्रुतम एव अर्थम अनुसृणोति और देश दिगंतरैश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवति। तो देशांतर में और दिशांतर में, दिशाएं हैं पूर्वादि और देश हैं ये अलग अलग स्थान, मुंबई में या पूना आदि में जो अनुभव किया तो स्वप्न में भी वैसा ही पूना में अनुभव किया हुआ जैसा स्वप्न दिखेगा, काशी में अनुभव किया काशी में गए तो ऐसा लगेगा कि काशी में ही बाबा विश्वनाथ का प्रातःकालीन मंगल आरती का हम दर्शन कर रहे हैं, उसके पश्चात महाभिषेक कर रहे हैं, ऐसा स्वप्न काशी में जिसने पहले ये किया है उसको कभी आ सकता है। तो जैसा आप जागृत में जिस देश में अनुभव किए हैं वैसा ही संस्कार पड़ा उस देश का और उसी दिशा का, तो वैसा ही स्वप्न में भी उसके जैसा ही देखते हैं। ये यहां पर कहा देश दिगंतरैश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवति और दृष्टंचादृष्टंच, दृष्टम का मतलब इस जन्म में चक्षु इंद्रिय से आपने जिसको ग्रहण किया उसके जैसा पदार्थ भी स्वप्न में दिख सकता है, और अदृष्टम का अर्थ कभी नहीं देखा ऐसा नहीं, इस जन्म में नहीं देखा ऐसा। कई बार स्वप्न होता है लगता है कि कभी भी हमने इस जन्म में ऐसा दृश्य नहीं देखा था, वैसा स्वप्न में दिखा का अर्थ बिना देखे ही बिना संस्कार के ही वो दिखा ऐसा नहीं, वो इस जन्म में अदृष्ट है, जन्मांतर में दृष्ट है। ये नहीं कि आपको इस जन्म में जिन जिन का अनुभव करते हैं उन्हीं उन्हीं का स्वप्न आएगा, उनके जैसे ही पदार्थ स्वप्न में दिखेंगे। पूर्व अनुभूत, पूर्व जन्म में अनुभूत पदार्थों के स्वप्न नहीं आएंगे ऐसा नहीं। इसलिए अदृष्टम का अर्थ है पूर्व जन्म में दृष्ट चक्षु इंद्रिय से, उसका स्वप्न आएगा उसका भी आएगा। इसलिए दृष्टंच अदृष्टंच ओ पश्यति के साथ अन्वय करना, इस जन्म में जिसका अनुभव किया उसके जैसा भी स्वप्न देख सकता है, इस जन्म में जिसका अनुभव नहीं हुआ पूर्व जन्म में हुआ है दर्शन जिन पदार्थों का उनका भी कभी स्वप्न में अनुभव कर सकता है। इसलिए अदृष्टम लिखा, हाँ पूर्व जन्म के संस्कार भी इस जन्म में जो उद्भूत होते हैं उन पदार्थों के जैसे पदार्थ भी स्वप्न में दिखते हैं। ऐसे श्रुतंचा श्रुतंच, इसमें श्रुतम का अर्थ करना इस जन्म में सुना हुआ, और कई ऐसे भी स्वप्न में शब्द सुनते हैं जिनको कभी इस जन्म में सुना नहीं है, तो पूर्व जन्म में श्रुत। अश्रुतम का अर्थ है इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में श्रुत। उन शब्दों जैसे शब्द भी स्वप्न में सुन सकते हैं। अनुभूतंच अनुभूतंच, अनुभूतम का अर्थ है ये जो दृष्ट और श्रुत से तो लेना, बाह्य इंद्रिय से जिनका अनुभव किया उन्हें तो दृष्ट कहा जाता है, और अनुभूत का अर्थ है केवल मन से जिनका अनुभव होता है, जिनका ज्ञान होता है, मानस प्रत्यक्ष, उन्हें कहा जाता है अनुभूत। बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष केवल मन से जिसे देखा जा रहा है उन्हें कहा जा रहा है अनुभूत इस जन्म में। और अनुभूत का अर्थ है ऐसा पूर्व जन्म में बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष केवल मन से ही जिनका अनुभव हुआ है वे पदार्थ। उन दोनों के भी संस्कार बुद्धि में होने से संस्कार वशात अनुभूत पदार्थ भी और अननुभूत पदार्थ का भी स्वप्न में दर्शन हो सकता है। और सच असच, तो सत कहा जाता है जो जागृत अवस्था में बाधित नहीं होता है, रज्जु आदि पदार्थ जागृत अवस्था में अबाधित है, सत्य है, उनको सत कहा जा रहा है। व्यवहार अवस्था में व्यावहारिक सत्ता वाले जिनको व्यवहार अवस्था में मिथ्या नहीं कहा जाता वे सत कहलाते हैं। और असत का अर्थ है स्वप्न अवस्था जो जागृत अवस्था में ही बाधित होते हैं, सुक्ति में रजत, रज्जु में सर्प, आकाश में नील रूप, मृग तृष्णिका, सूर्य किरणों में दिखने वाला जल, ये सब जो है जागृत अवस्था में विवेक से बाधित हो जाते हैं, उनको असत शब्द से लिया जा रहा है। असत का अर्थ बिल्कुल जिनकी कोई सत्ता नहीं वे नहीं, बाधित होने वाले पदार्थ, आंद्रित पदार्थ, आंद्रित पदार्थों के लिए असत शब्द का प्रयोग है। बिल्कुल जिनकी कोई सत्ता ही नहीं है, आकाश के पुष्प की, मनुष्य के सिंह की, उनका तो अनुभव ही नहीं होगा, उनका अनुभव ही नहीं होगा तो संस्कार नहीं पड़ेगा, और जिसका संस्कार नहीं पड़ेगा वह स्वप्न में दिख नहीं सकता, स्वप्न में उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो सुनने पर भी आकाश का पुष्प सुना है, हाँ तो शब्द सुना आपने, श्रोत्र इंद्रिय से तो ग्रहण होता है शब्द, हाँ तो खाली शब्द मात्र ये होगा लेकिन अर्थ नहीं दिखेगा। अरे यहां असत शब्द का तो अर्थ लेना है, असत शब्द से लेना है, असत शब्द मात्र नहीं, असत पदार्थ जिनका जागृत में अनुभव हुआ वे कौन हैं? वो सुक्ति में प्रतीयमान चांदी, रज्जु में प्रतीयमान सर्प, आकाश में प्रतीयमान नीलिमा, ये सब असत शब्द से कहे जा रहे हैं। यहां पर श्रुति में का अर्थ निकलता है आंद्रित पदार्थ, मिथ्या पदार्थ, और उनको भी जागृत में उसी रूप में देखा बाधित रूप से, तो स्वप्न में भी कई बार ऐसा स्वप्न आ सकता है कि रास्ते में जा रहे हैं और जाते समय मंद अंधकार में रस्सी पड़ी हुई है और उसमें सर्प की भ्रांति हुई स्वप्न में, जैसे जागृत में भ्रांति होती है ऐसे स्वप्न में भी ऐसे भ्रांति का स्वप्न आ सकता है। जागृत में जिसको भ्रांति हुई है और बाद में प्रकाश हुआ, रस्सी का ज्ञान हुआ, सर्प मिथ्या है ये निश्चित हुआ, ऐसे स्वप्न में भी हो जाता है ना, कि स्वप्न में पहले भ्रांति हुई फिर उसके अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, उससे स्वप्न में जिस पदार्थ की भ्रांति हुई थी वह पदार्थ बाधित हुआ।